नमो महापतन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाति कृष्ण दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतम सप्तकांतम गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर निष्ठां प्रणमाम मंदे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सनातन चैतन्य मनोवीष्टम स्थापित येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं तदा यं प्रपूजयन्तं द्वैपायनो विरह कर्तव्या विभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो तं सर्वभूतरिपयं भजामि राधाम स्मरामि राधाम करुणाकरात्मा ततो मम नास्ति वक्त वध के संबंध में वो हमने शिक्षा की बात कही थी। कौन कौन सी बात बतलाई थी और सब बातें बतलाई स्वनिष्ठ किसको बताया था बतलाओ प्रारंभिक जो गुण है जो भक्ति के साथ में आकृत होने पर उनको भी भक्ति कह देते हैं
स्वरूपता
भक्ति नहीं है जैसे श्रवणम कीर्तनम वंदनम ये सब स्वरूप का भक्ति हो, ये नहीं है। किंतु भक्ति के साथ में आचरित होने पर ही उनको संरक्षित भक्ति अन्यथा जैसे दान है परोपकार है अकुट द्रोह बदान्य मधुभाषी सुखी अकिंचन ये 25 अपनापति सुनी करोवती सदना अमानी मानव ये सब ये भक्ति नहीं है। सब बोलना भक्ति नहीं है, उपकार करना भक्ति नहीं है। किंतु जब भक्तिमान आदमी के साथ में जब इनका आचरण किया जाता है भक्ति के साथ में तब ये समझिए। इसलिए ये कपान बजाना फूल बजाना मतलब वो खूब जोर से ये सुरक्षित भक्ति नहीं है। किंतु कीर्तन के साथ में भगवान के नाम रूप भूमिका का कीर्तन के समय में ये सहायता करते हैं तब ये, इसलिए इसको ऐसा करना चाहिए जब कीर्तन हो रहा सुंदर मधुर शब्द से कीर्तन से अनुगत होकर के ये बजे तब तो ये ठीक हो आने तो समाधम चलने लग गया बस कोई प्रधान हो गया तो पता आदमी मिल करके मजीरा को बजाओ और तीन बजाओ या मृदंग बजाओ ट्रंप ले लो खूब शोर करो और कीर्तन मत करो उसमें हरे कृष्ण तो हो जाएगा कीर्तन। क्योंकि कुछ भी ना है केवल हरे कृष्ण करो देश पूरा भी करो तो भी कीर्तन हो जाएगा। बुझ करके प्रवचन रोज इसलिए होते हैं कि लोग समझ करके हृदय में धारण करते हैं। यदि हृदय में धारण नहीं कर सका अभी व्यक्ति नहीं हुई दूसरों से फिर उसको बोल नहीं सकते तो सुनना ठीक नहीं। इसे दूसरों से कमश धीरे 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 जो सुनेंगे उसको दूसरों को अपने व्यक्ति के साथ में रखना है। अगला था स्वनिष्ठ परिनिष्ठित और सब विषय में इसका विचार होगा। स्वनिष्ठ होगा वो फूल व्यक्ति होगा गुरुकरण में भक्ति के पालन में अनर्थों के दूर करने में सब में ही इस फूल व्यक्ति अनुष्ठान पर अधिक तोड़ देगा। हम लोग पुरुषोत्तम व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं वो कहेगा कि दिन में कितनी बार खाते हैं एक बार या तीन बार उपवास करते हैं और इन सब पर अधिक जोर देगा। तीर्थ यात्रा में अधिक जोर देगा हरि कथा श्रवण कीर्तन पर जोर नहीं देगा। किंतु शास्त्र का उद्देश्य मूल है श्रवण और कीर्तन स्मरण इस पर जोर अनाधिकारी इस पर नहीं आएगा क्योंकि धीरे धीरे उसको आना है। तो इनका आर जो लेकर के चलता है वो भूल का भूल का शक्ति राज्य में जितने बहुत प्रकार के चार प्रकार के अनर्थ और एक एक चार चार प्रकार के ये 16 प्रकार के अनर्थ उसमें बतलाए गए। भजन दर्पण में भक्ति गुणों का
भजन और
भजन कृष्ण का कृष्ण के मुख में दो दो बार विश्व ब्रह्मांड का दर्शन भी बतलाया गया। आनंदित करने के लिए उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण और कुछ अपने पैरों पर चल करके गोपियों के घरों में भी आना जाना आरंभ कर दिया। अपने लिए नहीं भगवान की सारी क्रिया भक्तों के विनोद के लिए और भक्तों की सारी क्रिया भगवान को विनोद पर करने के लिए। भगवान की कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं होती भगवान की क्रिया, विशेषकर कृष्ण की क्रिया, असुरों के विनाश के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, साधारण भक्तों के लिए भी नहीं होती, नहीं होती। वो किनके लिए होती है? प्रतिभाव भावित भक्तों की प्रसन्नता के लिए होता है। उसमें असुरों का संहार हो जाए या साधारण भक्तों को कुछ आनंद हो जाए, वो दूसरी का, किंतु उनका उद्देश्य नहीं। समझ में केवल मात्र ब्रज के भक्तों को आनंद विधान करने के लिए ही चोरी से लेकर मिथ्याभाषित से लेकर जो कुछ भी उनका है, यशोदा मैया ने पूछा, तेरा भैया कह रहा है तूने मट्टी खाई, और कृष्ण ने कहा कि मट्टी मैंने नहीं खाई। अच्छे ये लड़के बोल रहे हैं तो बोलने दो मात भैया, इनके बात पर विश्वास मत करो, उनसे तो हमारा विवाद हो गया इसलिए ये हमारे विपक्ष में इंतजार करता है। अब बताओ भैया, आप उसी का पक्ष ले रहे हैं, तुम्हें विश्वास न हो तुम मेरे मुख को दे सकती है। जो माया ने प्रस्तुतिकरण कर दिया पहले से, कृष्ण की कोई भी बात रुचि न हो, कृष्ण सप्तम त्रिसप्तम सप्तस्य जोनी सुंदर सहितम
सत्यात्मक सत्य निम सत्तात्मकम तम शरण प्रपद्ये।
तो कृष्ण को सत्य की सत्ता होती है, कोई भी प्रिंसिपल वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनकी जो क्रियाकलाप है अथवा मुख से बोलने से अथवा उनका कोई व्यवहार आचार कभी भी असत्य नहीं हो सकता। जो मैंने कहा कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मैंने मैट्री नहीं खाई, और वो जो मैंने तेरे मैट्री खाई, कृष्ण ने कहा मैया हमारे मुख देख ले, मैया मुख देख ले, यदि मुख में कहीं भी मट्टी यदि मिल जाती तो फिर क्या होता, कृष्ण असत्य हो जाती। योग माने यहां पर यह दिखलाया, कोई चीज खाई जाती है बाहर से, आत्मा बाहर में कोई चीज हो उसे उठा करके मुख के अंदर में भीतर में देना का नाम खाना है। अपने अंदर की चीज कोई खाता है? तो योग मैंने देखा ये सेवा करने का एक उत्तम समय आया, इसलिए कृष्ण भी न जाने जो यशोदा जी भी देखने ये मती नहीं खाया और उनका प्रेम का ये निमल भी हो जाए, पुनर्वर्थन भी हो जाए, सब काम एक साथ में हो जाए, हमारे प्रभु कभी भी झूठा न हो, क्योंकि झूठा ही नहीं। इसलिए उसने क्या किया, कृष्ण को पता नहीं और उनके मुख विदर में केवल इतने छोटे से मुख में पेट ओख नहीं मुख में ही देखा, असंख्य ब्रह्मांड नदी भूमि पृथ्वी जो कुछ है, एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को दे, जैसा काकभूषुंडी ने कभी देखा, अर्जुन ने थोड़ा सा आंशिक देखा, दुर्योधन ने भी थोड़ा सा पीछे से देखा, दुर्वासा जी ने देखा, कर्ण मुनि ने देखा कुछ थोड़ा सा, आज यशोदा जी परिपूर्ण रूप से देख रहे हैं कृष्ण के मुख में जो कुछ विश्व ब्रह्मांड, जो मिट्टी नाम की कोई चीज हो भी सकती है और मिट्टी के जितने भी विकार हो सकते हैं, उन नदी नाला वृक्ष पहाड़ पर्वत सब कुछ को मुख के अंदर में देखा, बाहर से लेकर के मिट्टी खाने की कोई जो बाहर में कुछ है ही नहीं है, जो कुछ है सब कोई चीज बाहर उनको दिखी नहीं। अब देखी एक जसोदा नहीं, कितनी जसोदा उसमें। उसने देखा आकाश तारे सब कुछ देखा, कितनी कितनी कल्पकी कितनी कितनी लीलाओं को भी उन्होंने देखा, कितने शंकर कितने क्या क्या उन्होंने ब्रह्मा इत्यादि को देखा। कहीं विश्व का सृजन हो रहा है, कहीं विश्व उनके मुख में जा रहा है, सब कुछ देख करके रील घुमा। सिनेमे का जो रील होता है ना, वो तो एक पतली सी छोटी सी कोई लंबी सी रील होती है, उसका जो जो भाग लाइट के सामने आता है वो देखता है, नृत्य करता है, सब कुछ होता है, और उसके साथ में स्वर को मिला देते हैं, इसलिए वो बोलने वाला सिनेमा बन जाता है, उसमें अपना कोई स्वर क्या नहीं है। एक आदमी बैठा तो उसके कितने चित्र हैं, उसमें लाखों चित्र मिलकर के एक आदमी का बैठना और उठना और नृत्य करना होता है। तो ये रील जब चलने लगा, चलते चलते देखा और भयानक अवस्था उनकी हो गई, कुछ बेहोश होने लगी। देखा अरे ये तो पृथ्वी लोग हम मारे, अरे ये तो ब्रज आ गया, ये तो गोवर्धन इत्यादि शब्द दिख रहा है, अरे ये तो आ गया एकदम वृंदावन आ गया, ओ ये तो गोकुल है, ये तो मेरा घर है और इसी में कृष्ण खड़े हैं और जसोदा में मुख ऐसे देखे, अरे ये क्या देख रहा हूं। इतने में देखा कि मैं बाहर खड़ी हूं और कृष्ण का मुख वैसा ही, और मुख उसने बंद कर दिया, बस आंख बंद करके ध्यान करने लगे। मिट्टी कहीं नहीं मिली हाथ में। कृष्ण ने झूठ कहा या सच कहा, मिट्टी खाई कि नहीं, ये एकदम विस्मरण हो गया, नई लीला आरंभ हो गई। ये मैंने क्या देखा, सब का परिवर्तन हो गया कथा का, और उसने मिट्टी खाई कि नहीं, झूठ बोला कि नहीं, सत्य बोला कि नहीं, क्या हुआ, सब कुछ विस्मृति हो गई। मैंने क्या, ये भूत की माया है, त्यागनी पिशाचनी इत्यादि की दृष्टि है, नजर लग गई बच्चे को या मुझे खुद ही नजर लग गई, या दैवी माया है, ये तो यहां पर हो नहीं सकते, हम तो नारायण ठाकुर जी की पूजा करते हैं, तो ये क्या हुआ। हाथ पकड़ करके बच्चे की अंगुली, बच्चा उनको उनका उनकी अंगुली पकड़ ली बच्चे, और कुछ ये चिंतित हुई से लेकर के चलने लगे, अपने स्थान पर आई, उसका आंगन की बात है ना, उसको घर ले आई। इतने बच्चे ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, कैसे स्वभाव सुन, और मैया मैया का करके तन पाने के लिए पैर पटकने लग गया और हाथ ऐसे कर दिया गोदी में जाने के लिए, बस सब कुछ खुल गया, एकदम पूरी रूप से विस्मृत हो गया। अब जो कृष्ण ने जो कहा जो मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये बात सत्य ही की झूठ हुई, मिट्टी कहां से खाई, खाए खोने को बाहर की चीज तो कृष्ण के बाहर है, उसी में लिखा गया है नजस्य अंतर बहिर, जिसका कोई अंतर नहीं है बाहर नहीं है, उसको एक साधारण रस्सी कैसे बांध सकती है, अंतर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, जिसके भीतर भी नहीं है, बाकी किसको चीज जाएगी जिसके बाहर से कोई बांधे, तो उसका बाहर में कोई चीज है ही नहीं है, असीम अनंत है, और भीतर से कोई आदि और अंत ही नहीं जिसका, फिर उसको कैसे बांधा जाएगा। तो ऐसे ही आज यशोदा जी ने देखा, ये हम लोगों के ये लीला हुई हम लोगों के लिए, कुछ शिक्षा के लिए। कृष्ण जी का अवतार उनके साथ में, यशोदा जी के साथ में तो वही मिट्टी खाया कि नहीं और इसके बाद यह होकर के खत्म हो गया। अब हम लोगों के लिए जिसका अंत अब नहीं, बार नहीं, अब हम तटस्थ होकर के विचार कर अब तब इसमें कुछ सीखा। इसलिए कृष्ण का कोई भी व्यवहार, कोई भी बात कभी भी छूटी नहीं। स्थूल दर्शी कहते हैं भक्त लोग कृष्ण झूठ बोले, भक्त कभी भी झूठ नहीं बोलता।
सखा लोग कहा मैया ये
कभी नहीं, कभी कोई है ही नहीं सकता जी। देखने का सुनने का धर्म है,
इसमें क्या होगा
अभिव्यक्ति का।
सखा लोग ने कहा मैया ये
जब ऐसे अधिकार में तुम लोग आएगा तो देखेगा वहां पर कोई अशक्त नहीं भक्तों के जीवन में कभी भी नहीं। युधिष्ठिर महाराज स्थूल दर्शियों को समझा भी तो नहीं जा सकता, नहीं समझेंगे क्योंकि अधिकार। युधिष्ठिर महाराज जी घोर अनिति का कार्य किया, एक तो जुआ जो दूसरों को नहीं खेलना चाहिए जुआ खेला। जुआ कौन खेलते हैं? जुआरी जिनकी बुद्धि नहीं है, भ्रष्ट लोग जुआ खेला। जुआ में अपना सब राज्य हार गया कोई बात नहीं, भाइयों को क्यों हार गए? भाइयों का क्या अधिकार है? भाई किसी अपने संपत्ति का बराबरी का उत्तराधिकारी होता है, उनको संपत्ति में जितना अधिकार है वो कहते थे हमारे भाग का जितना राज्यवाद था वो मैं हार जाता। अपने भाइयों का तब भी राज्य क्यों हार गए और अपने भाइयों के ऊपर में उनका क्या अधिकार है? पिता का माता का कुछ भाइयों पर अधिकार हो सकता है ना, किंतु भाई का भाई के ऊपर में क्या अधिकार है? उसके आप पर, उसके जीवन पर, उसके और चीजों पर। अच्छा हाँ, इतने व्यसनी बुद्धिहीन कि अपनी स्त्री को भी हार जाते हैं और हारने के बाद में उनको स्त्री को नंगी करते हुए पकड़ करके जुगा पकड़ करके फेंकता हुआ रजस पवार हम नग्न करता हुआ घसीटता हुआ ला रहा है। भाई कुछ क्रोधित हो गए तो भाई लोग कह सकते थे आपने ये क्या कर दिया, तुमने क्या, आपने नहीं कह सकते कहते तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हारा क्या अधिकार है, तुमको हम बड़ा भाई नहीं मानते हैं, तुम्हारा हमारा कोई भी संबंध नहीं है, तुमने ऐसा दुर्नीति क्यों किया, स्त्री क्यों हार ली? वो कहती मैं आपकी स्त्री केवल नहीं हूं, मैं पांचों की, आप हारने वाले कौन, मुझे क्या कर लेते। तो ये पांडव ने या द्रौपदी ने ऐसा क्यों नहीं कहा, इसका कारण क्या है? अच्छा ये लोगों ने नहीं कहा, कृष्ण ने और व्यास देव जी ने जो महाभारत के रचयिता है और कृष्ण जो स्वयं उनके सखा है, कृष्ण ने क्यों नहीं कहा? महा आद्योपांत महाभारत ने कभी नहीं किया कि युधिष्ठिर तुमने ये दुर्नीति का कारण, युवा खेला और द्रौपदी को हार गया, भाइयों को हार गया, खबरदार ऐसा मत कभी करना, कहा कभी? अच्छा व्यास जी जो समस्त शास्त्रों के और धर्मों के रचयिता और प्रतिष्ठापक, इनके मुख से एक बार उनके लिए अपशब्द क्यों नहीं निकला? अब इससे अधिक क्या बुरा हो सकता है? हो सकता है क्यों नहीं कहा, इसका कारण क्या है? क्योंकि वो बुरा चीज था ही नहीं, किंतु ये बुरा चीज उसमें नहीं था, ये कौन कहेगा? स्वनिष्ठ कहेगा या परनिष्ठ कहेगा? एकांतिक वाले कहेंगे, दूसरे नहीं कहेंगे। और स्वनिष्ठों को समझाया नहीं जा सकता, स्थूल दर्शियों को नहीं समझाया जा सकता। स्थूल व्यक्ति लोग इसी को लेकर के आलोचना करते हैं, भला बुरा, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, एक भालो एक मंद, सब भ्रम। विचार किया कौन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, यही भालो तुम जो ये कहता है साधारण व्यक्ति, ये अच्छा है ये बुरा है, युधिष्ठिर जी ने बुरा किया, उन्होंने हरिश्चंद्र ने अच्छा किया, ये भ्रम है। द्वैता द्वैत कहते हैं कृष्ण उसमें भी ये खराब है ये अच्छा है, ये सब मन का भ्रम है। जो कृष्ण कर रहे हैं भक्त कर रहे हैं, भाई एकमात्र सत्य है, सत्य की परिभाषा ये। कृष्ण कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। कोई भी चीज गोपियों को वस्त्र ले दिया, नहीं चलिया, बड़ी मुश्किल से पानी में रह नहीं सकी, ठिठुर करके मरने वाली है, प्राण यहां तक आ गए, अब वो अड़े हैं, चले आओ, तुम लोगों ने बबलू देवता के ही हैं, बबलू देवता के हैं, तुमने अपराध युक्ति निकाल दिया, कोई युक्ति ये नहीं। और कह जल्दी आकर मरना चाहते हो तो मरो, तुम हमने क्या करो, आप ही बचना चाहती हो चली आओ, तो वो आई, सिर से अपने अंगों को ढक लिया, हाथों से अपने और सब्जी को कट लिया, ऐसे नहीं हाथ जोड़ करके सिर से प्रणाम करो, ये कोई बात है? कौन सभ्य जगत का आदमी ये कहेगा जी उन्होंने ठीक किया? कोई ही कहेगा सभ्य आदमी? किंतु एकांतिक वाले विचार कर, कितनी प्रेममयी लीला है, इस शरीर का क्या मूल्य है, और इसी शरीर से यदि वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो परा सोपान है प्रेम राज्य का, किंतु उनके समझ में नहीं आता और न कभी आएगा। यदि सौभाग्यवशतः कृष्ण के भक्तों का संग हो तो ये चीजें उन लोगों को समझ में आएगी, नहीं तो कोटि कोटि जन्म भी वृथा चले जाएंगे। ये सब सत्य असत्य का निर्णय वो नहीं कर सकते। इसलिए ये जो दृष्टि है, कोई कोई दुर्लभ भक्तों को जो भगवान की प्रसन्न कृपा पात्र हैं, गुरु की करुणा हुई है, वो लोग इसका सामंजस्य करके ठीक रूप में दर्शन करेंगे, और नहीं तो इसी में मरेंगे, अशांत होंगे और दुख करेंगे। शांति इन लोगों के लिए नहीं, भाव भक्तों को शांति अवस्थ का अवस्थम दृष्टि मानुषता उन लोगों को। हम लोग भी भगवान की करुणा, गुरु वैष्णव की करुणा से इसी तरह में शांतिक रूप में बढ़े, कोई चीज में भी दो दृष्टि न आए, ये दोष है, ये गुण है, ये है। हमको तो भक्ति की तरफ में चल रहा है, कितना शांत हो जाएगा उतना समय बर्बाद हुआ, इसलिए इसके तरफ में हमको समय नहीं है, फुर्सत नहीं है एकांतिक भक्तों को ये सब चिंता करने के लिए। इसलिए कृष्ण सत्य है, कृष्ण की बातें सत्य हैं, उनका आचरण शिष्ट है। योग माया ने कृष्ण के अनजाने में भी ये जगत को दिखलाया, यशोदा जी के दिखलाने की तरह। इसलिए कृष्ण का कोई भी आचरण कपटपूर्ण, असत्य, अव्यवहारी, अशिष्टतापूर्ण, अन्याय, दुराचार, व्यभिचार नहीं, इस चीज को खूब अच्छी तरह से विश्वास के साथ मुझे नहीं हो रहा तो नहीं समझ में आ रहा, बस यहीं तक। तुम लोग कभी भी संतों के चरित्र पर भी ऐसा ही समझना, संत चरित्र सदा सदा ही पवित्र, ये निंदा
ये निंदे हिंसा
हिंसा करी
भगवती विनोद नासम्भे सदा थके मोन धरी।
भक्ति ठाकुर कहते हैं मैं उन लोगों से बात नहीं करता जो सुंदर, तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का चरित्र शुभ कपासु के समान होता है, कपास का जो होता है अत्यंत स्वच्छ पवित्र देव के कार्य में लगने वाली होती है, और उसमें कीड़ा लग जाए उसे खा करके चट्टी करके काला का उसमें दाग लगा दे तो गड़बड़ है, वो देव काम में नहीं लगता। उसी प्रकाशित संतों का चरित्र सदा पवित्र होता है, जो हिंसा करते हैं एक तो समझ में नहीं आया, इसलिए निंदा करते हैं हिंसा करके, तो उनके साथ में संभाषण नहीं करता भक्ति विनोद ठाकुर जी करते हैं, वो समझते हैं। इसलिए वैष्णव के चरित्र के प्रति कभी भी ऐसा मत करना, उनके चरित्र अगम्य अपार कृष्ण जैसे होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब कृष्ण झूठ नहीं बोलते, 50 बार चोरी करते हैं, गोपियों को बुलाकर हमने कब बुलाया, कब बुलाया, अपने घरों में प्रथा जी आप लोग पतियों की सेवा करें, बड़े बड़े धर्म उपदेश दे रहे हैं, बड़े हैं आप साधु बन
गए।
गोपियों ने कहा कि आप साधु कब से बने, बचपन से ही तो हम आपको देख रहे हैं। तो इस तरह से कृष्ण के लीलाओं को समझने की चेष्टा करनी चाहिए बैठ, और जो प्रवेश करना थोड़ा सा भी सीख गया बड़ा पर तब का आनंद होगा। कृष्ण विचार पर लीला कथाओं में पढ़ने में उतना आनंद नहीं है, अनुभूति के साथ में यदि अनुभव करते हुए पढ़े ना पर्पत में आनंद से हृदय क्षणित होता चला जाता है, पद पर एक क्रम पर्पत होता है। ऐसा ही पढ़ना, कोई भी चीज, कोई एक श्लोक में, कोई एक शब्द है, कोई भी शब्द पर विचार करो, प्रेम ही पर विचार करो, प्रेम की परिभाषा नीचे से लेकर के ऊपर तक ले जाओ, महाभाव महाभाव के ऊपर भी, और विचार करो तो उसका उदाहरण एक एक छोड़ करके कृष्ण पर और भक्तों में लगाओ, देखो कि कितना आनंद मिलता है, फुर्सत नहीं मिलेगी इधर उधर चिंता का। इस तरह से कृष्ण की लीलाओं को सुखदेव जी अनुभव कर रहे हैं, बतला रहे हैं परीक्षित महाराज, बड़े आनंदित हो रहे हैं, कृष्ण रस छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों जैसा भी थोड़ा सा कभी कभी आनंद मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, अभी छोड़ करके भागेंगे 10 मिनट के बाद, मैं भी सुनता हूं। एक तुरहिन थी, तुरहिन जानता है,
फल
तुरहिन मैंने क्या, कुंजड़ी, कुंजड़ा कुंजड़ी सुना है कभी, केवल सब्जी ही नहीं, कोई भी चीज टोकरी में लेकर बड़ी बड़ी टोकरियों में फल फूल सब ले, और गांव में जाकर घरों में बैठ गई और बड़े प्रेम के साथ में आवाज करती हुई बगाकर फल देकर के उसके बदले में चावल दाल गेहूं चना उसका दर मान लेगी 1 रुपया किलो फल है, अपने बगीचे का फल है ना, उसको गई मान लिया कि ये बाजार में रेट है 1 रुपया किलो बाजार, गांव में गई गांव में फल उतना मिलता नहीं, देखा कि चना आजकल 6 रुपया दर है किलो, गेहूं 4 रुपया दर है, और दूसरे सवाल, तो मैं तो सस्ते में इसको बेच रही हूं, तुम्हारे घर में जो अनाज है मैं तौल करके बराबर बराबर दे दूंगी ना, इतना सहज तरीका। अब बाजार में उसको अधिक से अधिक 1 किलो फल के लिए 1 पौवा मान की चना मिलता है, और वहां पर उसको कितना मिल जाए 1 किलो फल का 1 किलो, अब कितना उसको लाभ हुआ, किंतु लेकर के गई है ना 2 माइल 3 माइल 4 माइल तक
घर तक तो
दर्शन करके जाती है,
घर तक पहुंचा देते हैं,
जाती है घर में लोगों से शहर की बातें करती है, अपने अपने अनुभव की उनसे भी सुनती है, घर का दुख दर्द भी सुनती है, अपना भी कुछ बात देती है। ऐसे ही एक कुंजड़ी फल विक्रयणी अभी शीत धवल उसके
खिचड़ी के
धवल मैंने शीत मैंने कृष्ण दोनों मिले थे मैंने प्रौढ़ा है, कोई वृद्धा एकदम जरा वृद्धा नहीं हो गई। इधर सुनो खूब ठीक से, गांव पर हाथ मत रखो मुख पर ऐसे, तो ध्यान ऐसे एकदम तंग करके सुनिए। बहुत ही शिक्षाएं हैं इसमें, क्या देखने गई और कृष्ण ने देख लिया और भर दिया बस यही नहीं, बहुत से इसमें विषय है। जब गंभीर रूप से इसको विचार कर भागवत में तीन चार श्लोकों में ही कि कितने में वर्णन कर दिया है, किंतु ब्रह्मविवर्त पुराण में है एक श्लोक में, किंतु ब्रह्मविवर्त वर्णन इत्यादि इत्यादि में ऐसा कुछ विस्तृत वर्णन। गोपाल चंपू में और आनंद वृंदावन चंपू में भाव नेत्रों से कवि कर्ण को और जीव गोस्वामी ने इसे प्रण में विघोर होकर के उनके हृदय रूपी निर्धक से कुछ ऐसे बातें आई हैं जिससे जगत को मुक्त कर सकते हैं, भक्तों को आनंद मिलता है। तो उन्हीं के बारे में विशेष करके आनंद वृंदावन चंपू और जीव गोस्वामी का गोपाल गोपाल चंपू में वो वर्णन धवल और मैंने काला और सफेद कुछ सुंदरी सी थी, क्यों शरीर गठीला क्यों गठीला, जो आदमी परिश्रम नहीं करता खाता पीता है घर में बैठ करके रसोई की ओर बनाए तो स्थूल हो जाएगा, चमड़े कहीं से धुल जाएंगे युवावस्था में, और सिर पर भाग लेकर के गठीला परिश्रम करते हुए श्वेत मुख कहां से निकल रहे हैं, और आएगी और जाएगी कितना तीन चार माइल तक घर घर में बैठ करके, तो क्या होगा शरीर एकदम गठीला होगा। तो ऐसे सुंदरी कई ब्रज में जाती थी, घर के लोगों से कुछ सौहार्द बन गया था, रोज रोज जाने से होता है, और स्त्रियां वो जल्दी से स्त्रियों में अपना स्थान पैदा कर लेती है बैठ करके, काम ना हो ना, तो ऐसी गोपनीय बातें भी उनके पति के संबंध में, पुत्र के संबंध में, बहू के संबंध में, सब कुछ वो ध्यान भूल करके पूछ लेंगे और बता दें, कुछ मन में रखेंगे। तो ऐसे ही वो जाति कृष्ण के जन्म के पहले से ही वो जाति थी, कृष्ण का भी जन्म नहीं हुआ तभी से जाति हुआ, तो कृष्ण उनको यशोदा जी को लाला उत्पन्न हुआ है, और सारा ब्रज उसको देखने के लिए जाता है। उसने बहुत बार चेष्टा की कि यशोदा के लाला को मैं दर्शन करूं, किंतु न जाने क्यों उसका दर्शन ही नहीं होता, या तो कभी सोया रहता है या कभी भैया एक उसको ऐसे धूपान पिला करके भीतर में रखती है कि वो कभी दर्शन नहीं होता। जब कुछ बड़ा हुआ भी थोड़ा सा घुटनों पर चल नहीं लगा, बहुत चेता कुछ न कुछ जरूर विघ्न आ जाता है, दर्शन नहीं। साधक जीव जब भगवान के दर्शन के लिए प्रयत्न करता है और उनको कंस को जरासंध को सुर्योधन को कालजमन को बिना कारण ही दर्शन उनका मिल जाएगा सहज रूप में विरोधियों को, किंतु जो भक्त हैं वो चाहेंगे महाराज समुद्र से बहुत दर्शन करने के लिए जाएगा, किंतु उनको दर्शन नहीं हो रहे, भीम की आराधना की, भीम के प्रसन्न होने पर उनको भगवान का दर्शन, ऐसे नहीं था। तो बहुत चेष्टा इसने की नहीं हुआ, बड़ी खिन्न कुछ हो गई, इतना दिन मैंने चेष्टा की और नंदलाल का मुझे दर्शन नहीं हुआ, लाला का दर्शन नहीं हुआ, इससे कुछ सोच रहे आज हुआई सुंदर सुंदर फल लिए, फलों में कदम्ब का फूल पका हुआ, बेटा है कभी खाया खाया नहीं तो क्या हुआ, कदम्ब का फूल श्रीमती राधिका के अंग जैसा सुंदर पीला था, उसके ऊपर में रेशे से
लगे
खट्टा मीठा वो होता है, देखने में आदमी लुप्त हो जाए, सुगंध उसे धीमी धीमी सुगंध, यदि वो कहीं रहे ना मधु मधुमक्खियां या समझ जो पहुंच जाए, तीनू फल लिया, केले के सुंदर सुंदर पीले पीले, आम के पीले पीले पके हुए फल ले लिए, और भी तरह तरह के फलों से टोकरी को सजा दिया। जानते हैं कैसे सजाती हैं और कैसे सजाते हैं आलू वाले, कैसे सजाते हैं आलू केले और मुसब्बी और संतरे, सड़े गले दाग लगे हुए भीतर में रखते सामने, और अच्छे अच्छे सामने सजा करके बोले, यदि आप वो तोड़ना चाहेंगे हजार तने पर भी नहीं तोड़े, वो अपना जो पल्ला होता है ना ऐसे लगाए सामने से, और ऐसा उनका दिमाग होता है तेज, किसी फल को लेकर के सामने अच्छा वाला ही दिखाएंगे, देखो ना कैसा सुंदर, और इधर में वो है पका हुआ शराब। मान लीजिए कि आपने किसी तरह से चलाकी चतुराई करके अच्छे अच्छे आलू चढ़ा दिए, तो वो अब चढ़ा करके और आलू चढ़ा देगा और ऐसे ऐसे गिरा देगा, खिला करके गिरा देगा, वे तो हाथ से फिट देगा अच्छा अच्छा, और फिर जब देखा जब कम हो गया तब फिर वो गंदा वाला चढ़ा देगा, आप कितना तक करेंगे, ऐसे वो चलाक चतुर होते हैं, विषय भी बड़े पक्के होते हैं, तो वो भी अच्छे अच्छे फलों को सजा करके आलू गोकुल में आए, गोकुल के बाजार में, गोकुल में के बाजार में बेचना उसको अभिष्ट नहीं था, उसको अभिष्ट क्या था
नंदलाल,
यदि किसी प्रकार से नंदलाल की दृष्टि इस पर पड़ जाए और दुग्ध हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा कुछ बिक जाएगा, मैया आएगी, भक्ति जो है वो ऐसा भक्ति नहीं है, देखने की आशा तो जरूर है, लोग कहते हैं कि सुंदर है किंतु भक्ति अभी वैसी कुछ नहीं है, इस तरह से वो बना करके सुंदर सुंदर रूप लेकर और वो फल लो रे फल लो इस प्रकार से वो आवाज दे रही है, विशेष करके वो आवाज दे रही उसी गली में जहां पर यशोदा जी का फोन था, उसी में चक्कर चारों तरफ काटते काटते कुछ समय हो गया, सोचा जी सी इतना दिन हमने चेष्टा किया कुछ देखा, आप लोगों ने देखा होगा, हमने देखा है कि एक गाड़ी में वो ठेला होता है चक्के जिसमें चार चक्के होते हैं, उसके ऊपर में छावनी जाती है और उसमें घंटा लटका देते हैं और टन 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 बजाते हैं, टन टन बजाते हैं और हवाई मिठाई कुश्ती मराई बेचने के लिए बजाते हैं, बजाने के उद्देश्य जो बच्चे आएंगे भग करके और भैया से जीत करेंगे, बाप से जीत करेंगे, या अपने वो मरते हैं गोलक में पैसे निकाल करके ले आएंगे और हमारा बिक्री हो जाएगा, इसलिए बजाने का आवाज दे रही है, उद्देश्य किसी प्रकार से बच्चे आ जाए हमें कृष्ण आ जाए और हमारा फल कुछ बिक जाए, उसका दर्शन भी बहुत प्रयास किया, थक गई यार और नहीं उठूंगी, नंद के द्वार पर आकर के बैठ गए, दो एक बार आवाज, आज यदि नहीं आया तो मैं अपने प्राणों को रखूंगा, इतना दिन हो गया और एक बार भी दर्शन है, कुछ मन में संकल्प और विकल्प करते हैं, कृष्ण से भी रहा नहीं गया है, जो मैंने कहा जैसे अब मिलाना चाहिए दोनों को, कृष्ण आज आंगन में खेल रहे हैं, अब पैरों के बल में खड़े होकर के आप थोड़े कभी कभी ब्रह्मांड घाट में जब चले जाते हैं, अभी ब्रह्मांड घाट में वो मक्खी खाने की लीला है, उसी के बाद की ये लीला। तो वो वहीं पर बैठ करके एक बार आवाज दिया, कृष्ण आनंद से सुना और देखा, छोटे से बच्चे नंगे से हैं कमाई में, कमा में वो धनी सुनसुनी बंदी बंदी हुई है, बड़ा सुंदर दिखते थे। हर मैया ने ये बांध करके एक अत्र कर दिया, उसमें एक मोर पंख और छोटी सी बंसुली, बिना पंख जब से शायद जन्म हुआ तब से ही वो शायद जन्म लेकर के हुआ न तब से हुआ, बंसी उनको विश्वत में देखा गया था, बंसी को हाथ में लेकर खेल रहे हैं, बलदेव जी से कभी लड़ रहे हैं, गोपियां लड़ा रही हैं, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तुम बलवान है कि ये बलवान है, और ताली बजाती हैं, कभी हमारा कृष्ण बलवान है वो पता है वो बलवान है, और लड़ा रही है और दोनों एक दूसरे को पछाड़ रहे हैं, कभी वो कभी वो, फटाक देखा फल लो रे पल, बस ऐसा ध्यान करके देखा, देख करके देखा पीला, और ये सब फल देखे लाल लाल पीले, सुंदरी उसकी तरफ नहीं देखा, फल की तरफ कृष्ण को तो देखते ही कोई ना कोई चीज जरूर दे देता है कुछ, बल्कि लेने देने के लिए ही सब लोग आते हैं, कुंजड़ी भी उनका यह रूप देख सकते आज मुग्ध हो। कृष्ण ने भी उसको देखा, फल की तरफ देखा, और उनके आंखों में भी मुख में भी लोभ है, हाँ ये सुंदर फल में मिल जाते, और वो कुछ देखने में ठगी सी रह गई, उसको याद नहीं कि इनको देना है कि नहीं देना है। जब थोड़ा सा कुछ होश आया तो कुछ बातचीत तो होनी चाहिए, बिना बातचीत का कैसे होगा, तो बातचीत कैसे आ रहा है, कोई भी बात कोई सार्थक और असार्थक दो रूपों में होती है, कुछ बातें होती हैं बात आरंभ करने के, महाराज जी आप कुशल से हैं सही अच्छा, इसका मतलब क्या, ये कोई प्रश्न है साधुओं से, ये नहीं, बाकी सिलसिला करने का एक तरीका है, हमको कुछ पूछना है तो एक बार कुछ नहीं लेंगे, महाराज जी आपका शरीर ठीक है, वो भी आए कहेंगे तुम्हारे मैया और बात ठीक है, घर में कुशल है, ये पूछ लेंगे, संस्था पूछना ये उचित भी नहीं, और इनका पूछने का तात्पर्य फिर भी बातचीत को शुरू करने के लिए कुछ होना। उसने कहा क्या चाहिए, तो कृष्ण ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्यों देख रहे हैं ऐसे, बड़ी चित्र में जा हल्लेगा हल्लेगा, कृष्ण का जो कुछ लाया ऐसे ही फल मिलता है, ले आया कृष्ण सोचा जी लेके आया, अरे कुछ मूल्य मूल्य ले आया, मूल्य शब्द नहीं उसके बदले में और कोई शब्द होगा क्रम, किंतु मैं मूल्य पा रहा हूं, मूल्य कुछ ले आया, मूल्य क्या, कृष्ण अभी तक मूल्य कुछ नहीं से जानते, सुना ही नहीं शब्द, आज पहला न्योछाव कर सकते हैं, मूल्य कर सकते हैं और कोई, उन्होंने कहा कि एक कोई चीज देने के बदले कोई चीज दी जाती है उसको कहते हैं मूल्य। कृष्ण अभी तक चिंता नहीं किया, अरे मेरी मैया तो मुझे रोज देती है, कभी मिठाई देती है, कभी मक्खन रोटी देती है, कुछ मूल्य तो नहीं मानती, यहां पर कितनी बड़ी सारी शिक्षा है, यदि आपने कृष्ण से कृष्ण को देने के लिए कुछ मूल्य चाहा तो वो गंगागिरी तुलझी का काम है, कुंजड़ी का, कृष्ण कह रहे हैं अरे मेरी मैया तो कभी भी आज तक जीवन में कितना खिलाया खिलाया है, चलो वो खाने खाने बहुत गए एक चले आए, कुछ मंगा ही नहीं, हमारे घर में इतनी मैयाएं आती हैं क्योंकि आज तक किसी ने कुछ मांगा नहीं, चुंबन देती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, मक्खन देती हैं, मिश्री देती हैं, ना जाने क्या क्या देती हैं, कितने अलंकार उनको धारण कराती हैं। किंतु आज तक ये पहला मौका है कि जो कोई इसके बदले में कुछ चाह रहा है, उसने जब कुछ ऐसी अभावों की अभिव्यक्ति की, कुंजरी सचमुच में बड़ी लज्जित थी। हाँ, इतना सुंदर मधुर थी, और मैं इसे इस साधारण फल के बदले में कुछ फल चाहती हूं। थोड़ी सी देर में चुप हो गई, आंखों से आंसू किसी देखने लगे, आंखें छल छल आए, और ये बच्चा ये कच्ची भावना की बात कहा कि मैया ने हमसे कुछ नहीं मांगा, आप तू मांग रही है। कृष्ण ने देखा जैसे आंखों में से आंसू, शायद साधारण आदमी समझेगा कि तो कुछ मांगते हैं उसके बदले में ये नहीं दे सकता, फल लेने की इच्छा इसलिए रो रही है, न जाने किस काम से रो रही। कृष्ण ने अच्छा, कृष्ण दौड़ करके झुक घर में भीतर चले। आंगन में गहिम की राशि पड़ी हुई है, राशि जिसमें खेल रहे थे, घरौंदा बना रहे थे, छीट रहे हैं, कहां तक छीटेंगे घर में, कोई भी अंतर नहीं पड़ता। मांगे कि 50 मन 60 मन 100 मन गेहूं पड़ा जाए, उस पर बच्चा कूदता है, खेलता है, कहां जाएगा, बड़े आनंद के साथ में दौड़ करके गया, अंजलि में उठाया और उसे मैं लेकर के लिए कथित खड़ा, जब चाहती है तो कुछ दे ही दे, मेरी फल दो। उसको बड़ी प्लानिंग और लज्जा, देखा अंजलि में केवल इस जगह थोड़े से 2-4 गेहूं के कण पड़े हुए, और बाकी यहां से सब कुछ रास्ते में ही लाते 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 में ही गिर गए, उसकी कबार लग गई है गेहूं की धरधर कर, वहां से वहां तक छिप गया है और वहां से सब निकल गया। हाथ में केवल 3-4 दाने होंगे गिनती के, और ऐसे छोड़ दिया, मन वो सब कुछ उसमें दे दिया। उसने देखा सुंदर लग रहा है, जैसे हाथ में कितना लेगा, तो उसने खेले अमरूद फल आम और जो दूसरे पीलू कदम्ब के एक एक फल देने लगे। आज पता नहीं क्यों कृष्ण के हाथों में देखो ये दो ही फल है, किंतु सब उसका जितना टोकरी का फल था सभी उसी के अंदर में आ गया, किंतु देखा जैसे बस पैसा ही उठाती गई और देखी गई और सब कुछ के अंदर। ये लीला की अघट घटन पति ऐसी शक्ति है, ये कृष्ण हाथों नहीं, इसके पहले गोपाल टेम्पू में बोल रहे हैं, जब वो लेकर के आए तो देखा कि हाथ में तो कुछ नहीं, उसके पहले वाले में जब पहली वाली बात थी, जब थी उसका वात्सल्य भाव कुछ था, उसने कहा कि मैं तुम्हें फल दूंगी किंतु साथ है, यदि तू हमारे गोदी में एक बार बैठ जाए
और मां कहेगा
और मां कहा गए सोच रही है, मैं तो जाति की बहुत निम्न शुद्ध जाति, शुद्ध जाति के लोग ऐसा काम करते हैं, हाँ फल फल लगाना भी कोई जाति कोई जाति या क्या ये सब होती है, फूल उल लगाते हैं, फल लेते हैं, तो वो सब सोचा कि मैं एक बार से चरण डालू नीच जाति की, गोपो का लड़का ये कभी हमारी गोदी में बैठ सकता है, इतना सुंदर इतना मधुर बच्चा, और मुझे मां कह देगा, हो सकता है कि उसके बच्चे हो या ना हो, उसका बच्चा नहीं होगा, और मातृभाव उसके अंदर में एकदम जग पड़ा। कृष्ण ने देखा कोई मैया तो नहीं, कोई गोपी तो नहीं, न जाने पीछे कहा देगी मैया उसकी गोदी में बैठ गया था, इसको मैया कहा उनको लज्जा बढ़ी आई। जब देखा कि कोई नहीं है तो झट उसकी गोदी में बैठ गए और उसका थोड़ी पकड़ लिया, मैया जी अब तुम मुझे पकड़ो। बस उसके हाथों में एकदम गदगद हो गई, आंसू से आंसू से एकदम झटझट करते उसके कपड़े गीले हो गए, गाल से एकदम बहने लग गया उसके। जीवन में पहला कितना आनंद का क्षण, इसके बाद उसने धरती धरती गई। जब तक कि कृष्ण वहां से झट विपरीत होकर के अपनी मैया के पास में दौड़ सके, और बैठी हुई ठगी हुई वहीं पर रह गई। कुछ देर के बाद में हो चुका, बहुत देर तक तो होश ही नहीं रहा। फल के साथ साथ में और एक चीज दिया, वो था मन, मन भी दे दिया और चली गई, चला गया बच्चा। और इधर वहां से उठी थोड़ी देर के बाद में, और वही स्मृति वही कृष्ण का मधुर भाव और चिंतन लेकर के वहां से जमुना के किनारे आई। उसने देखा, खोल करके देखा, भारी कौन लग रहा है, टोकरी भारी सी लग रही है। अब तक उसको भारी और हल्की का कोई, जब वहां पर आई तो देखा कि काफी भारी, खोल करके देखा समस्त रत्नों से जवाहरा उनका नील मणियों से एक टुकड़ी भरी। मैंने कहा ये क्या खास पत्थर में भी आई, जब तक भक्ति नहीं होती है तब तक तो ये खास पत्थर मिट्टी के ढेले भी बहुत ही मूल्यवान सब दिखते हैं, और भक्ति हो जाने पर ये मरकत और मणिया और हीरे और जवाहरात की मट्टी के ठीकर बन जाते हैं, ढेले बन जाते हैं। बस वहीं पर लेखक के जमुना में उसको फेंक दिया, टोकरी भी फेंक दी। फिर घर वालों को पता नहीं ये कहां गई, घर भी नहीं लौट, कहां गई कोई पता, बावरी हो गई कृष्ण प्रेम, और कृष्ण को ढूंढने के लिए सदा के लिए चली गई। हो सकता है कि कृष्ण को फिर से स्वरूपता ढूंढने पा दिया। ये तो साधन की स्थिति में प्रकट लीला में उसका दर्शन है। तो वो जन्मों तक उसने सुकृति की होगी, भजन किया होगा और ऐसी लीलाएं श्रवण की होगी, आज उस लीला में प्रवेश करने के लिए प्रकट लीला में प्रवेश किया, कृष्ण और गोपियों का संग मिला, असंग मिलने से उस शरीर को भी छोड़ करके अपने नित्य सिद्ध बलकर शरीर में वो चली गई और नित्य सेवा में वैकुंठ बलूक में अप्रकट लीला में उठ। ऐसा ही क्रम है लीला में और समस्त आसाधकों का, ऐसे ही किसी लीला को दर्शन और अनुभव करना चाहिए। तब तो ये श्रवण हुआ, और इस रूप में श्रवण नहीं किया तो वो श्रवण नहीं हुआ। इसलिए किसी लीला के प्रवेश करने के लिए अंतर में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए ये फल विक्रणी की लीला भागवत में तो एक श्लोक में ही कि आप श्लोक में दो श्लोक में तो वर्णन, किंतु इन लीलाओं का विस्तृत रूप श्रीमद् भागवत एक मंत्रमयी ग्रंथ है। समाधि भाषा में ये लिखा गया, जो समाधि भाषा में समाधि में पहुंचेगा वो समाधि भाषा को समझेगा, सब लोग नहीं समझ सकते, इसलिए सबके लिए निषेध किया गया है। बढ़कर के वृथा समय नष्ट होगा और धंधा रोजगार के लिए भागवत को पढ़ेंगे, जैसे आज कल करके लोग पढ़ करके धंधा करते हैं, रोजगार करते हैं, पैसे देते हैं। इस कुंडली ने तो फेंक दिया सब जवाहर आ गया, किंतु हम लोग इसको नहीं फेंक सकते, इसको किसी न किसी रूप में लेकर के और बिजनेस करते हैं। जब कृष्ण कुछ बात करते हैं, गोपियों को घर में मक्खन चुराने के लिए हंसते हैं, हंसते हैं मैंने क्या घुसते हैं घरों में, गोपियां मानो पहले से ही तैयार रहती हैं, और देखते ही कुछ गोपियां उनको गाली गलौज कर आ गया, देखो तो बंदर आ गया, चोर आ गया, उदंड आ गया, कोई कहते दुष्ट आ गया। एक आदमी ने मुझसे प्रश्न किया, ये सब भाई कुछ कहे, कृष्ण को गोपियां या कोई दुष्ट कैसे कह सकता है? तो हमको भी संदेह, ये दुष्ट तो नहीं कहना चाहिए, दुष्ट मैंने क्या दुष्ट जिसका उनका कारण गड़बड़ है, दोष जिसका है उसको दुष्ट कहा। तो गोपियां कैसे कहेंगी? हमने कहा था जी गोस्वामी ने या हमारे ग्रंथकारों ने लिखा है कि नहीं ऐसा, सब हमने ढूंढ करके देखा कि एक जगह नहीं, पचासों जगह दुष्ट शब्द ही उल्लेख है। भावना के ऊपर में सब कुछ निर्भर, चोर चोर का भावना क्या है? ब्रज में एक ही चोर है और दूसरा कुछ नहीं चोर आता, हृदय की बात है। तो ये क्या हुआ राजयोग? उसी प्रकार से दुष्ट माने दुष्ट का मतलब यहां नटखटते हैं। दुष्ट माने क्या? तुम्हारा सबसे मूल्यवान वस्तु है इसको मैं ले लूंगा, चोरी से सीना जोड़ी से जैसे भी उसको लूंगा, इसी को तो दुष्ट। तो गोपियां उनको ऐसे ही कभी कभी दुष्ट भी करती हैं, नटखट करती हैं, चोर करती हैं, बंदर करती हैं, उदंड करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। मानो सुनने के लिए ही जाए, मक्खन लेना उद्देश्य नहीं, कृष्ण को मक्खन लेने का उद्देश्य है, मक्खन कृष्ण को नहीं मिलता नहीं, मक्खन के साथ में उनको प्रेम के लिए, प्रेम मिला हुआ मक्खन वो लेते हैं। तो इसलिए गोपियों के घर में जाते हैं, कोटि कोटि जन्मों तक की उन्होंने आराधना की।
परिपाटी में
कहा है और दूसरी बात है जाते को जन्मों में उन्होंने तपस्या की हो, नंदलाला यशोदा नंदन हमारे घर में आए चोरी कर, ऐसे नहीं जाते, सबके घर में नहीं जाए, उन गोपियों के ही घर में जाते। किसी ब्राह्मण के घर में कभी चोरी की? किसी वशिष्ठ के घर में चोरी की होगी? कभी नहीं। बस गोपियों के घरों में जिन्होंने चाहा है उनके घरों में। एक बात और, ये सब जो बाल लीलाएं हैं उनमें गोपी बालिकाओं का कहीं उल्लेख नहीं, केवल 21वें अध्याय में पूर्वराग में और इसके बाद में कात्यायनी की पूजा में ही उनका उल्लेख प्रथम बार हुआ। इसके पहले क्यों नहीं? गोपियां क्या नहीं पद में नहीं रहती थी, कुमारियां क्यों नहीं उल्लेख? उसको जोग वगैरह ने अभी कृष्ण से अलग रखा, जब तक कि पूर्वराग हमना और ऐसी चीज न आ जाए, आम पक न जाए तब तक उसको लेकर के खाना चूसना ये आनंददायक मीठा नहीं होगा। इसलिए जिसमें मीठापन है वैसे सफर रस का ही आस्वादन और वात्सल्य रस का आस्वादन करें, तब तक उनको आगे सामने नहीं लाया। उनको जब उम्र हो गई उस उम्र की है तो नित्य सिद्धा वो गोपियां नित्य सिद्धा है, किंतु हमारे व्यास जी ने या सुखदेव गोस्वामी ने तथा बात उनको उसी समय में लाया जब जिसके लिए जब युक्त हो, जब भावना में तमिल करके क्या होगा, इसलिए भावना को उत्पन्न होने पर दोनों को पूर्व बराग के बाद में तो फिर कात्यायनी के बाद में जाएगा, इसके पहले कभी नहीं। इसलिए सब परस का जितना आस्वादन है ये सब का तो यहां बता रहे हैं गोपी गयो कोशमपुर जनन्य भयात अवरोह पंचापुरी सा मातु निर्भक्षण कौतुकम मातु कभी मन खने ईशा। गोपियों के गाड़ी का आस्वादन करने के लिए आक्रोशन है, अरे चोर जा रहा है, ये चोर आ गया है, छिप करके दरवाजे में कबाड़ के पीछे खड़ी हो गई, चोर को आ जाने दो, जाल में आग तो जाए, बस खड़ी हो गई चुपचाप। कृष्ण ने नहीं देखा जो इस कबाड़ के अंदर में यहीं पर खड़ी है, यहां पर खड़ी है। कृष्ण देखा सपाट मैदान, बस घुस गए, अंदर तक देखा, आज प्रदीप जल रहा है, मक्खन भी साफ दिखाई दे रहा है, एकदम फंस गए भीतर तक। जब वहां चले गए, जब कलश में हाथ लगाया तभी ठंड में, और लौटने की फिराक में है, कुछ खा भी एक दो बार खाया, और जब लौटने हैं तब झट निकल गई, अब जाएगा कहां से। दरवाजे के सामने खड़ी हो गई तंग कर, और कहने क्या क्या किस लिए हमको पकड़ रही, क्या मैंने किया। क्या किया, और चोरी कर करके मक्खन तू खाया, चोर झूठा लबा बस सुना दिया, अभी तुमको दे। तो मैंने चोरी कहां की, मैंने तो समझा दे मेरा घर है, तू समझ रही है मेरा घर, हमारा ये घर, हमने इसमें दिया, तो हाथ उसमें क्यों डाला, तो हाथ में इसमें गर्मी लगी मुझे, भैया ने पहना दिया कंगन, जवाहरात का उसे हाथ जल रहा था, ठंडा करने के लिए मैंने हाथ ही यहां पर किस लिए लग गया, वहां पर बने लग गया, पर पकड़ ही तो दिया। कृष्ण बहाना बना रहे, बंदरों ने लगा दिया, मैं बंदरों से मना कर रहा था, बंदरों ने यहां लगा दिया। चित्र के बाद गोपी मन में बड़ी आनंदित हो रही है, देखो तो कैसा झूठ बोल रहा है, कैसा बहाना बना रहा है, छोटा सा बच्चा कहां से सीख लिया इतनी चोरी और बात बनाना, बात नहीं हो गया, डर कनिक भी नहीं, और एकदम ऐसे निर्णय होकर के बातें कर, गोपी मुक्त हो जाती, कभी हाथ छुआ लेते हैं, कभी गोपी उनको पकड़ करके यशोदा जी के सामने ले जाती है, और जब मुख खुला जाता है तो देखती है कि हमारा ही बच्चा, लज्जित हो जाती, कितनी तरह की क्रीड़ाएं ये करते हैं। वही यहां पर सूत्र में बतलाया है, क्रोध को जनन्या, जनन्या माने
जननिगण,
जननी का बहुत सी माता है, कौन ब्रज की जितनी भी प्रौढ़ स्थानिया है वो सभी इनकी माताएं हैं, वो कृष्ण को इसी ललचा करके बुलाती हैं, और फिर अपने हाथ से खिलाती हैं, तो कन्या में हम गरीब घर के लड़के हैं, हमारे घर में मक्खन नहीं,
हमारे लड़का
ये बात बनाने का ये बहाना है, किंतु यह प्रेम का आदान प्रदान, असल कोई भी लीला कृष्ण की ऐसी नहीं है जो प्रेम का आदान प्रदान नहीं, ऊपर से ऐसे फूल दिखती हैं दूसरे रूप में किंतु ऐसे नहीं। सच्चा भया अवलोकन चातुरीशा, और गाली देकर के मारने के बहाने कोई जर्सी जर्सी आ जाती है, जर्सी में
डोकरी
जैसे जैसे पुतला जैसे बोलने में पांच तरह के स्वर निकलने वाली अत्यंत वृद्ध है, सिर कांप रहा है, किसलिए आ गया, तुम्हारा यहां क्या रखा है, बाप का रखा है, ऐसे ऐसी बातें करती थी, और वो भर से भय से ऐसे देखते हैं, डर जाते हैं, जी जाते भगने की चेष्टा करते हैं, तो कहते हैं सब छात्र, अरे सब छात्र तो भय के ही ये भय है, काल भी इनको देकर के थराता है, जिनके नाम के समान से भी मृत्यु तक दूर हो जाती है, आज भयभीत हो जाते हैं गोपियों की बातों से। चातुरी का और ऐसे देखते हैं सभी लोगों का मन मुक्त हो जाता है, चातुरी का माम पातु, ये उनकी ये जो मृदभक्षण की लीलाएं, चोरी करने की लीलाएं, और सब जो कुंजरे वाली जो लीला है, ये ऐसी सब जो लीलाएं हैं जिसमें कृष्ण भयभीत भी हो रहे हैं, वो लीलाएं हमारी रक्षा करें। कैसे रक्षा करें? दो रूपों, एक तो साधक अवस्था में जो अनर्थ है इनको
अनर्थ,
और कृष्ण के दर्शन में जो बाधक चीजें हैं वो सब चीजें जो बाधक हैं ये सब भी दूर हो, और उनके विरह में जो मेरी विरहता है कृष्ण के दर्शन से और लीलाओं के आदान प्रदान से, तो ये दूर हो। ये रक्षाएं हमारी सब समय हृदय में स्फूर्ति होकर के हमारी सब समय पालु और हमारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ेगा। क्रीड़ा समाप्त दही मन समेशा, और कृष्ण की जो माता दही मंथन कर रही है वो मंथन जो लीला है वो मुझे अवश्य अवश्य हमारी रक्षा करे, हमारा पालन पोषण। कौन सी? वो आगे श्लोक में ये बतला रहे हैं ये कौन सी लीला है, कल बन जिसका जो भाव है वो
हम
ब्रज का, उसका जो भाव अभी तक गुप्त था द्वारकापुरी में, केवल उनके रूप पर ही आकृष्ट था, गुणों से संबंधित नहीं था और उसको रूप भी नहीं देखा, और कृष्ण की इन लीलाओं को कह करके और उनका उत्प्रेक करा। ये सब चीजें और यहाँ पर साधक अवस्था में, साधक माने वहां पर स्वरूप अवस्था में, स्वरूप सिद्धि में सिद्ध
वस्तु सिद्धि, वस्तु सिद्धि
वहां पर नहीं पहुंचने के पहले इन चीजों का ये संग हो रहा है नारद जी का, और उसका क्या कहते हैं वासनाकरण,
वासनावासी
अभी ये करना है धीरे धीरे। कृष्ण के जैसे स्वभाव चरित्र गुण और सब चीजें उनके हृदय में समीकरण करा है, इसको कहते हैं समीकरण करा। भक्तों के मुख से कृष्ण की इन लीला कथाओं को सुना करके ये लोग हमारे चित्त को तैयार कर रहे हैं उस भूमिका में ले जाने के लिए, प्रथम ये जरूरत है। इसलिए ये सब भाव जब हृदय में आएगा उसके द्वारा लोभ उत्पन्न होगा, फिर लोभ इतना प्रताप अधिक हो जाएगा और उसका संवरण किया ही नहीं जाएगा, रह नहीं सकता है, तब उस समय में कृष्ण के लीला में प्रवेश करने करके इस सब के लिए ये उसको उत्कंठित कर रहे हैं, उसके उत्कंठा को जगा रहे हैं। मंशा
अलदीकरणी के संबंध में अलदीकरणी से करनी से हम लोग क्या शिक्षा लाभ करते हैं, मतलब
कोई भी जाएगा तो साधारण कामना को लेकर के ही भगवान के पास में जाता, ऐसा ही नहीं। चाहे इस जन्म में चाहे इस जन्म में कुछ हो, भक्तों की तो पूरी बात कोई समझता है नहीं, उनके संग से पहले सकाम भक्ति का उद्रेक होता है, तो वो भक्तों के साथ में गई, ब्रज के भक्तों में गई, कृष्ण को दर्शन की लालसा भी, और साथ साथ में कुछ अपना बिजनेस भी कर लेगी, फल देकर के उसके बदले में कुछ ले लेगी, भावना से ही इसी भावना से पहले आदमी जाता है। किंतु धीरे धीरे भक्तों का संग होने पर जब जब भक्ति उसमें अंदर में प्रवेश करती जाती है उसकी कामनाएं कुछ कुछ निकलती चली जाती हैं, यही अनर्थ का दूर होना है। तो वो सकाम भाव से आई, कृष्ण का दर्शन किया, चित्त कुछ द्रवित हुआ, कृष्ण से बातचीत हो गई, एकदम पिघल गई, अपने को धिकार देने लगी। इसके बाद में कृष्ण के हाथों में उन्होंने फल देखी, यह है कर्म अर्पण। पहला हुआ सकाम भक्ति, अब इसके बाद में हुआ अपने जो कुछ फल है हमने जो किया है वो अर्पण कर। भगवान बड़े दयालु हैं,
यदि सकाम भक्त भी फल का अर्पण करने वाला व्यक्ति भी एकनिष्ठ होकर के कृष्ण के प्रति ही फल को अर्पण करे और कुछ मांगे भी, तो कृष्ण उसके फल की कामना को पूर्ण कर देते हैं, उसको टोकरी में भर दिया पूरा रत्न इत्यादि, जो कुछ चाहती थी उसे कोटि गुना दी। वो तो चाहती थी थोड़ा सा अन्न, किंतु उसे दिया क्या, उसको अथाह रत्न भंडार उसको भर दिया। और उसके बाद उन्होंने जो अपना प्रेम दिया उसको तुच्छ समझा, जमुना में बहा दिया, और साथ साथ में अपना देह और दैहिक जो कुछ भाव था उसको भी छोड़ दिया, घर नहीं लौटे, ब्रज के वनों में भगवान का भजन करते हुए झूलने लगे। अब उसे चिंता नहीं, जल भरण पोषण सुख दुख मान अपमान कोई भी चिंता नहीं रही और एकांतिक बन गई, सिर्फ ब्रज लोग को पधार गई। इस तरह से हम लोगों को भी भजन या किसी भी साधन का भी भजन ऐसे ही आरंभ। एक दो जन्म में कर्म की वासनाएं फल की वासनाएं सहज ही नष्ट नहीं हुए, किसी न किसी रूप में लगी रही, कुछ न कुछ लगी रहे। हम ही लोगों में है, सबका साधन बराबर नहीं है, भावना भी बराबर नहीं है, न जाने किसी का किस जन्म के का फल है, जो यहाँ पर अभी कुछ हरी कथा सुनने को मिल रही है, और किसी की उच्च भावना है कि नीच भावना है, किसी से दूसरे भी और ऊपर की भावना है, एक अधिकार में हम लोग नहीं है। इन कथाओं के साउंड से भी अनेक प्रकार के अधिकारों की पुष्टि हो, एक ही तरह की नहीं, जो जिस अधिकार में है उसी की अधिकार। अब दूसरी बात है, व्यास जी ने या सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया, अधिकारी व्यक्तियों के पहले उन्होंने वात्सल्य रस का वर्णन किया, अभी वात्सल्य रस का ही चल रहा है। सखा लोग अभी हैं, सभी बहुत अविकसित अवस्था में, अभी सखाओं का भी विकास नहीं, सखियों का तो कोई पता ही नहीं मधुर जरस का, जिसका जिसमें भाव है। इन कथाओं के श्रवण से अधिकारी व्यक्ति होता उन लीलाओं में लोग, और उसके लिए ये पुस्तिका रखा जाता जिसका जैसा भाव, जैसा ये
बाल लीला होते या फिर जागरण होते हैं प्रेम और दिव्या दासी पुत्रता वैश्विक देवी प्रेम देवी की परीक्षा रहे थे, और ऐसे ही तीन ही प्रेम देवी का दासी पुत्रता से प्रेम के उत्फुल्लित होते
हैं। कितने बड़े दयालु थे, यदि हम लोग इसको विचार करें, व्यक्ति ऐसा कह रहे थे जो सनातन गोस्वामी की बृहद भगवतामृत को सुनेगा उसको भक्तों के चरणों में कुछ अपराध हो जाने की संभावना है। क्यों
पागल है,
क्यों? इसलिए कि भक्तों में ऊंचा नीचा का विचार करेगा, प्रहलाद महाराज को छोटा समझेगा, हनुमान जी को बड़ा, हनुमान जी को छोटा समझेगा, अर्जुन को बड़ा, अर्जुन को छोटा समझेगा, यादवों को बड़ा, यादवों में उद्धव जी को बड़ा समझेगा, ये अपराध हो जाएगा, और फिर यादवों से बड़ा
ब्रजवासियों
को समझेगा, ब्रजवासियों में नंद से भी बड़ा श्रीदान सुबल को समझेगा, और उनसे भी बड़ा सुबल को समझेगा, और उनसे भी बड़ा ललिता विशाखा को समझेगा, उनसे भी बड़ी ललिता जी को, उनसे भी बड़ी चंद्रावली को, और चंद्रावली से भी बड़ा किसको समझेगा,
श्रीमती राधिका,
ये अपराध हो जाएगा। नहीं गलत बात, ऐसा ठीक जिन्होंने पढ़ा नहीं, वैष्णव का संग नहीं किया, तो ये सब गड़बड़ कैसे? भक्ति विनोद ठाकुर ने या नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया, वैष्णव में अधिकार के अनुसार में तारतम्य जान करके, जो उसी तारतम्य के अनुसार में वैष्णव की तारतम्य अनुसार सेवा करता है, उसको सिद्धि इत्यादि।
जय यमन वैष्णव चिनिया लैया आदर करिवे जबे, वैष्णवे कृपा ताहे सर्व सिद्धि अवश्य पाइवे तबे।
अभी आज एक मस्तक मुड़ाकर एक गृहस्थ भक्त या कोई भी ब्रह्मचारी घर से आया, मस्तक मुड़ा दिया और लाल कपड़े पहन लिए। देखा जी, मठ में तो तीन बार खाते हैं। उसने सवाल जैसे ये ठीक नहीं, मैं तो सवेरे यमुना जी में जाकर के स्नान करके अपना मंत्र जप इत्यादि करके केवल दिन में एक बार 3 बजे लूंगा और कुछ नहीं लूंगा, और एक कपड़ा यहीं तक धारण करता है, बहुत वैराग्य से रहता है, रात में सोता नहीं, गंडोत्री परिक्रमा गोवर्धन की दी आता है, बड़ा वैराग्य के साथ रहता है। और एक पुराने हैं बेचारे वैष्णव, तो वो अपना जैसा पहनना है, खाना है, भोजन है, प्रसाद को बड़े प्रेम के साथ में 3 बार प्रसाद पा लेते हैं, सवेरे भी थोड़ा सा जलपान कर लेते हैं, दोपहर को भी थोड़ा सा ले लेते हैं, शाम को भी लेते हैं, परिक्रमा परिक्रमा करते नहीं है, जब देखो तो भागवत की पोथी में डूबे रहते हैं, बातचीत भी लोगों से कम करते हैं, वैराग्य त्याग अधिक है नहीं, या तो मालाएं भोली या भागवत या दो चार हरी कथा में रहते हैं, कुछ सेवा कर लेते हैं, कभी कोई कुछ नहीं करता है तो जरा वो धो लेते हैं, जगह भी बर्तन भी धो लेते हैं। अब कोई साधारण यदि व्यक्ति आया, देखा जिसका भाव चमक रहा है, मस्तक मुंडित है और बड़े त्याग और वैराग्य के साथ में ये भजन कर रहा है, ये या सभी बराबर ही हैं, ऐसा समझना तो क्या होगा गति? उसको क्षमता नहीं है विचार करने। तो जिसको वैष्णवों का तारतम्य विचार नहीं है, वो अभी वैष्णव हुआ ही नहीं, अभी भी वैष्णव नहीं। जिनको ये विचार है, ये कनिष्ठ है, ये मध्यम है, ये उत्तम है, ये एकांतिक है, और उनको समझ बूझ करके उनके प्रति प्रणाम, गंडोत प्रणाम, मन आदर के साथ में प्रणाम, सर्वस्व समर्पण करके प्रणाम, और अपना सर्वस्व दे करके सेवा करके दिन रात उनकी सेवा करता हुआ भजन करता है, उनको पकड़िए। अभी कनिष्ठ वाले, कनिष्ठों में भी एक कनिष्ठ है, इसके समझ में नहीं आया। इसलिए वैष्णव का लक्षण प्रथम ही है कि वैष्णवता समझे, जो वैष्णव किसको कहते हैं, वैष्णव किसको कहते हैं, एकांतिक वैष्णव किसको कहते हैं, अनुरागी वैष्णव कहते हैं किसको, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमपर भक्त, प्रेमाधातुर भक्त, और भक्त से उत्तम परिकर, परिकरों में ये सब का ज्ञान, और नहीं ज्ञान है तो बस कहीं रास्ते में जाओ और कोई पत्थर मिल गया, यदि गिरिराज या शालिग्राम है तो जितने पत्थर मिलते जाए सामने बस उन्हीं की पूजा करते हुए चले जाएगा, न जाने कौन पत्थर शालिग्राम निकल आएगा। ये सब वैष्णव का है, इसलिए सनातन गोस्वामी ने जो विचार किया है, इसको समझ बूझ करके यदि कोई विचार करता है तो कुछ विचार करिले जिससे
पावे चमत्कार,
जिससे विचार करके समझ बूझ करके भगवान का एक दो बोलते तो किसी की लाइट आ जाए। तद्दधि भांड भाजनम तदसिक्यो पात्रानमनीत मोषणम तन्मातु भीति ग्रमण लोके लोके क्षण महाद्भुतम प्रभो। कृष्ण जी का वह रोदन हमें रक्षा कर, कृष्ण रो रहे हैं उनकी यह रोदन लीला भी हमारी रक्षा करे, जिसमें उन्होंने दधि का चोरी किया, बंदरों को खिलाया, शिकास्त्र सिक्के के ऊपर रखा हुआ मक्खन चोरी करके खुद खा रहे हैं, ब्राह्मण बंदरों को भी सखाओं को खिला रहे हैं, माता के भय से उन्होंने पलायन किया और भय से व्याकुल होकर के चंचल नेत्रों से देख रहे हैं माता की लखिया की तरफ में। इस महाभूत महा अद्भुत प्रभु की लीलाएं हमारी रक्षा करें। भगवान की लीलाएं भी प्रभु के समान ही ऐश्वर्य और माधुर्य परिपूर्ण, जैसे धाम का ऐश्वर्य पूर्ण है, सब कुछ करने में समर्थ है, ऐसे ही लीलाओं का स्मरण भी यदि कोई करे तो लीलाएं भगवत स्वरूप बनकर उसकी रक्षा करें। भगवत स्वरूप ही लीलाएं, भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम परिकर सब कुछ भगवत स्वरूप, और मनुष्य की ऐसी कोई अभिलाषा जीव की नहीं है जिसको वो पूरी न कर सके। लीलाओं का चिंतन करते हुए किसी भी लीला की और प्रभु उस लीला को प्रभु मानकर और उसे प्रार्थना कर आप हमारे ऊपर में कृपा कर, घर को कृपा करके कृष्ण का दर्शन और जो कुछ है प्रेम देना इत्यादि सभी वो लीलाएं। इसलिए तो स्मरण से सब सुखी है। इस तरह से यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कृष्ण की माखन लीलाओं का और विशेष करके दाम बंधन लीला का की तरफ में ये इंगित कर रहे हैं। कृष्ण उन गोपियों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए उनके घरों में सखाओं के साथ में चोरी करने के लिए मक्खन जाते हैं। चोरी न सभी दंडनीय चोरियां होती हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत सी चोरियां जो हैं वो अच्छी भी हैं, असत उद्देश्य से की गई चोरियां ही चोरियां हैं, उद्देश्य असत होना चाहिए, और यदि सत उद्देश्य है हमारे पापों की चोरी करनी ये खराब है, हमारी दुष्वासनाओं की जिन्होंने चोरी कर दी ये सब चोरियां चोरी नहीं। कृष्ण की लीलाएं भी ऐसे ही जो गोपियों की इच्छा के अनुसार में उनके घरों में जाकर के ये चोरी कर रहे हैं और उनका विभेदन कर रहे हैं। गोपियां घर में लीलाओं का आस्वादन करती हैं, ऊपर से भय दिखलाती हैं, कुछ आंखी बाकी बातें भी करती हैं, कुछ गालियां भी देती हैं, किंतु बड़ी प्रसन्न भी करते रहती हैं और सोच रही है यशोदा का दुर्भाग्य, ये कृष्ण अपने घर में यशोदा के सामने ऐसे लीलाएं नहीं करते। यशोदा को पता तक भी नहीं ये सब लीलाएं करते हैं। इसलिए किसी प्रकार से यशोदा को भी इन लीलाओं का रहस्य बतलाया जाए, वो भी कुछ सुने और समझे। वो किसी बहाना लेकर आती हैं नंद भवन में कृष्ण का दर्शन इत्यादि करने और कुछ उलाहना देने के बाद यशोदा जी को भी उनके क्रीड़ाओं का आस्वादन कराती हैं। कृष्ण बड़े हो गए हैं, बहुत उद्यमी भी हो गए हैं। पहले नर्वस लीला न करें तो फिर ऐश्वर्य भाव आ जाएगा। इसलिए इस प्रकार से कर रहे हैं, किसी को कहीं सब सुबह संदेह करने का भी अवकाश उनको नहीं। सब हर नर्व तक वो कर रहे हैं, कुछ दुष्टता भी कर रहे हैं। यदि किसी के घर में गए और उन्होंने चोरी करके उन चीजों को कहीं छिपा दिया और इसको नहीं मिला तो वो आग बबूला बन जाता है और बिगड़ जाता है, और बिगड़ करके अच्छा तूने छिपा दिया है ठीक, आज तो जा रहा हूं कल अंगार लेते आऊंगा और ऐसी जगह में रख दूंगा जब खत जल करके खाक हो जाएगा, तू मुझे नहीं देगी, मुझे नहीं दिया तो ये सब चीजों का रखने का तात्पर्य क्या है। सचमुच में कोई भी चीज ये सब चीज कृष्ण की है और उन्हें न देखकर के हमने अपने लिए कृष्ण से छिपा दिया है तो उस घर में आग लगना ही उचित है। कृष्ण तो कहते हैं ठीक, किंतु समझ पाना जरा रहस्यपूर्ण है। कभी गोपियां उलाहना देने के लिए आई तो उन लोगों ने कहा, यशोदा जी ने कहा, उसे छिपा करके क्यों नहीं रख, घर में शिकल लगा दो, छोटा सा बच्चा कैसे जाएगा। कहते ये सब करके देख लिया, बच्चों को कंधे पर चढ़ा करके या कहकर वो खोल लेता है।